ईरान के महान बुद्धिजीवी।
प्रिय श्रोताओ, ईरान के महान बुद्धिजीवी कार्यक्रम की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेरदादी और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
प्रिय श्रोताओं, आज हम 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ईरानी गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री अबुल वफा बुज़जानी के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। 10वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री मोहम्मद बिन मोहम्मद यहिया अबुल वफा बुज़जानी का पहली रमज़ान वर्ष 328 हिजरी कमरी को वर्तमान खुरासान के तुर्बत जाम शहर के निकट बुज़जान में जन्म हुआ। इब्ने नदीम की अल-फहरिस्त किताब में बुज़जानी के नाम के उल्लेख से उनके उच्च स्थान का पता चलता है, इसलिए कि वे इब्ने नदीम और अबू रेहान बैरूनी के दौर में जीवन व्यतीत करते थे। बुज़जानी ने गणित की प्राथमिक शिक्षा बुज़जान में अपने चचा और मामू से हासिल की। ये दोनों ही अपने समय के दक्ष गणितज्ञों में से थे। वर्ष 348 हिजरी कमरी में 20 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए वे बगदाद गए। वे अजदुद्दौला के बेटे शरफुद्दौला की सेवा में उपस्थित हुए और अबू सुहैल बीजन के मार्ग में शरफुद्दौला द्वारा निर्मित वेदशाला में अध्ययन करने लगे।
प्रसिद्ध इतिहासकार जॉर्ज सार्टर ने 10वीं शताब्दी ईस्वी की दूसरी छमाही या चौथी हिजरी शताब्दी की दूसरी छमाही को अबुल वफा का जमाना करार दिया है। ये वो काल था जब यूरोप में युद्ध, खींचतान और टकराव का माहौल था। ऐसा यूरोप जहां दास प्रथा और चर्च की शिक्षा प्रणाली के वर्चस्व ने हर प्रकार की शैक्षिक प्रगति के रास्ते को बंद कर रखा था।
पूरब में बगदाद के खलीफा का शासन कमजोर हो चला था और लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे। चीन, भारत और जापान में भी शैक्षिक प्रगति रुकी हुई थी। ऐसी परिस्थितियों में ईरान में स्थिति अलग थी। जिस समय अबुल वफा का जन्म हुआ, खुरासान पर सामानियान का शासन था और वे ईरानी परंपरा और फारसी साहित्य में रुचि रखते थे। इसके अलावा सामानियान अन्य धर्मों के प्रति कट्टर नहीं थे, इसीलिए बुद्धिजीवियों के लिए शांति और ज्ञान के विस्तार का वातावरण था। इस काल में किताबों की दुकानों की संख्या में वृद्धि हुई, बड़े पुस्तकालयों का निर्माण हुआ और ईरान भर में बड़े बड़े मदरसों एवं शैक्षिक संस्थानों का विस्तार हुआ। इस काल में अबू रेहान बैरूनी और इब्ने सीना जैसे महान बुद्धिजीवी जीवन व्यतीत करते थे। इस काल में ईरानी गणितज्ञ केवल यूनानी गणितज्ञों के अनुवादक नहीं थे, बल्कि उन्होंने गणित के विकास में अहम भूमिका निभाई।
ज्यामिति, गणित और खगोलशास्त्र के विकास में अबुल वफा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगीत में भी उन्हें दक्षता प्राप्त थी, लेकिन संगीत में उनकी ख्याति उतनी नहीं थी जितनी गणित और खगोलशास्त्र में थी। अबुल वफा को बगदाद पहुंचे हुए अभी कुछ ही वर्ष गुजरे थे कि वे एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी के रूप में पहचाने जाने लगे। बगदाद में वे खगोलशास्त्र में अध्ययन के अलावा अदालती काम भी करते थे। काफ़ी समय तक वे बगदाद में एक अस्पताल के प्रमुख भी रहे। अबुल वफा ने बगदाद के बुद्धिजीवियों के अलावा अपने समकालीन ईरानी और विदेशी बुद्धिजीवियों के साथ पत्राचार किया। इनमें से अबू अली हुबूबी और अबू रेहान बैरूनी का नाम लिया जा सकता है। अबू हयान तौहीदी और अबू नसर इराकी ने उन्हें शेख का उपनाम प्रदान किया था।
अबुल वफा अबू रेहान बैरूनी के साथ वैज्ञानिक विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। उदाहरण स्वरूप, जब अबू रेहान ख्वारज्म में थे और अबुल वफा बगदाद में थे, तो उन्होंने चंद्र ग्रहण का अध्ययन करके अपने अपने अध्ययनों के निष्कर्षों की तुलना की। अबुल वफा ने उक्लिदोस, ख्वारज्मी, दयोफांट और बतलमयूस जैसे विभिन्न ईरानी और यूनानी बुद्धिजीवियों की रचनाओं की व्याख्या की है और खुद भी ज्योमिति में नए नए शोध किए हैं।
अबुल वफा ने त्रिकोण के साइज की पैमाइश के लिए हेरॉन संबंध के समतुल्य एक संबंध का पता लगाया, जिसमें ऊंचाई के बिना कोणों की लंबाई का पता लगाया जाता है। उन्होंने इसे अबू अली हुबूबी को भेजा था। हालांकि त्रिकोणों में अबुल वफा का सबसे बड़ा कारनामा टांजेंट लाइन या स्पर्श रेखा का आविष्कार था। अबुल वफा की चार मूल रचनाएं हैं। पहली किताब लेखकारों को हिसाब किताब की जानकारी उपलब्ध कराती है। दूसरी किताब में उद्योगपतियों की आवश्यकता के अनुसार ज्यामिति की जानकारी है। अलमजस्ती और ज्यामिति नियम, पहली दोनों किताबों में गणित के स्पष्ट उदाहरण पेश किए गए हैं।
अबुल वफा ने अपने व्यवहारिक गणित के पहले दो भागों को केवल तर्क से विशेष किया है। उसके बाद तीसरे भाग से सातवें भाग तक सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक गणित को पेश किया है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये किताब 272 से 367 हिजरी कमरी के बीच लिखी गई है। जैसा कि खुद लेखक ने कहा है कि ये किताब अजदुद्दौला के लिए लिखी गई है। उन्होंने किताब के पहले अध्याय में गणित के सैद्धांतिक नियमों की समीक्षा की है और नए अर्थों को, जैसे कि विभिन्न प्रकार के फ्रैक्शंस या अंशों को, खास नियमों एवं तालिकाओं द्वारा बयान किया है। उन्होंने एक ऐसी शैली को परिचित करवाया जिसकी सहायता से पूर्वी शैलियों की तुलना में फ्रैक्शन को तेजी से सामान्य बनाया जा सकता है। किताब के दूसरे अध्याय में पहली बार इस्लामी जगत में गणित के इतिहास में नकारात्मक अंक का प्रयोग किया और उसे दैन अर्थात ऋण का नाम दिया।
ज्यामिति प्रयोगों की किताब में शुरू में ज्यामितिक इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के बारे में बात की गई है और उसके बाद निर्माण से संबंधित ज्यामितीय नियमों की व्याख्या की गई है और उसके बाद अधिक जटिल आकारों के बारे में बताया गया है। अबुल वफा ने हर स्थान पर तर्क द्वारा और अनेक शैलियों द्वारा समस्या का समाधान बताया है। वे अपने समाधानों के महत्व को समझते थे। अबुल वफा ने अपनी इस किताब में वायु आकारों पर भी ध्यान दिया है। विशेष रूप से ग्लोब पर आकार बनाकर उन्होंने विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला है। उन्होंने गुलदोजी, कालीन की बुनाई और टाइलिंग में इस्तेमाल होने वाले ज्यामिति आकारों पर ध्यान दिया है।
अबुल वफा के अद्वितीय कार्यों में से एक अलमजस्ती या अल कामिल नामक उनकी किताब है, जिसे बतलमयूस या टोलेमी के अलमजस्त के आधार पर लिखा गया है। कुछ इतिहासकारों के दृष्टिकोणों के विपरीत ये किताब टोलेमी की किताब का नया रूप नहीं है। ऐसी संभावना है कि उनकी किताब जीच की, जिसकी कोई प्रति बाकी नहीं रही है, वो वही अलमजस्ती है। हालांकि अबू रेहान बैरूनी ने उन्हें दो अलग अलग प्रतियां बताया है। अबुल वफा ने अपनी इस किताब में आकाशीय परिवर्तनों के लिए जो जानकारी ज़रूरी है उसकी व्याख्या की है। वास्तव में उनकी किताब त्रिकोणों को पूर्ण रूप से स्थापित करती है। अबुल वफा के प्रयासों के सम्मान के लिए चंद्रमा की एक सतह का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 388 हिजरी कमरी में बगदाद में उनका निधन हो गया।